रहे थे उसमें दो लाइन आई है अशरफ के लिए, यो अजीब अब आश्रम सुनिए, मन वच काय त्रियो का, मिथ्या अभिरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोग का। और इस पर अभी तक हमने ये देखा है कि एक तो एंट्री पॉइंट है जो फर्स्ट एंट्रेंस है और एक आखिरी में है, तो उसके 5 लेवल एक्चुअली बने हैं, बट हमने उसको पहले 2 लेवल्स में बांटा था। सबसे पहले स्टार्टिंग का जो है वो है योग, सबसे पहले जो खड़ा हुआ है वो योग है, और सबसे आखिरी में हमने रखा था उपयोग को,
योग
योग को और उपयोग को, राइट। योग में क्या था, मन मन योग, वचन योग, काय योग, और ये योग रास्ता है जिससे कर्म आएंगे। तो हमने इसमें दो चीजें देखी थी, योग होता है और कषाय होती है। तो जब अकेली योग होता है तो कौन सा आश्रव होता है,
क्रियापद
इंद्रपथ आश्रव, जब जो अरहंत भगवान के होता है। और जब इस योग में कषाय मिल जाती है तो उसको सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। तो जैसे कि बिना शरीर के इंद्रियां नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना योगों के कषाय नहीं हो सकती। तो योग इज द मेन फंक्शन, पहले योग होगा, योग के घर के ऊपर ही कषायों का महल बनेगा जो भी होगा। तो मैंने मन से कुछ सोचा या वचन से कुछ बोला या काया से कोई क्रिया करी, सबसे पहले उसके कारण आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होगा, कंपन होगा, और उससे फिर कर्म अट्रैक्ट होके आत्मा के पास आएंगे, और फिर वहां पर देखा जाएगा कि उन कर्मों की आगवानी करने के लिए कषाय वगैरह है कि नहीं है, होंगे तो फिर बंद होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न अभी तक?
नहीं, किसी को है तो बोलना प्लीज। और इन लोग समय से चुन नहीं है अनुभव किया।
ओके ठीक है, ठीक है, हाँ। तो हमने अभी तक ये देख लिया है, हमने लास्ट टाइम में ही डिस्कशन किया था, तो हमें क्यों, यदि कोई अकेली जैन श्रावक या नॉर्मल जैन लाइफ को भी फॉलो करता है तो वो कितने सारे कर्मों से बचा हुआ है, क्योंकि उसके मन में, वचन में और काया में बहुधा बहुत सारे ऐसी क्रियाएं और पाप कर्मों का आश्रव है जो हो ही नहीं पाता, राइट। ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये कितना बड़ा अपने आप में एक लक है, ये भाग्य है कि हम लोग ऑटोमेटिकली हमारी फैमिली से ही हमको ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि हम बहुत सारे पापों से तो खुद ही बचे हुए हैं, क्योंकि हमारी मन वचन काया में वैसी चेष्टाएं होती ही नहीं है, राइट। ठीक है, यहाँ
ना
तक किसी को कोई भी डिस्कशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब आगे, अब जब एक बार मन वचन काया की प्रवृत्ति हो गई और कर्म आ गए, तो अब काम शुरू होता है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद का। हम सबसे पहले बात करेंगे मिथ्यात्व की। क्या चीज है, कर्म यहाँ पर आत्मा के पास आ रहे हैं, वो आ इसलिए रहे हैं क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में कंपन हुआ है, उससे कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति आत्मा के अंदर आ गई है। ठीक है, आत्मा के अंदर कर्मों को ग्रहण करने की तो शक्ति आई है, कर्मों को रोकने की शक्ति अभी आत्मा के अंदर नहीं आई। तो अब यहाँ पर जिस आश्रव की चर्चा पंडित दौलतराम जी कर रहे हैं, वो बंध सहित आश्रव वाली चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने योगों के साथ मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और उपयोग को लिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाले आश्रव वो वाला आश्रव है जिसमें बंध होता ही है, ये वाले आश्रव में कर्म आए और बिना बंधे चले जाए ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो कर्मों का बंधना होगा, ये 4 प्रकार के कारणों से होगा। 4 प्रकार के कारण में सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, देन कषाय और प्रमाद। ये 4 प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, एक एक में पहले हम इनका सामान्य स्वरूप समझते हैं। मिथ्यात्व हमको पता है, मिथ्यात्व मतलब क्या होता है,
झूठी
मिथ्यात्व यानी कि क्या,
मान्यता। जो विवेक नहीं है हम को के जीव क्या है अजीव क्या है।
हाँ तो मतलब उल्टा श्रद्धा जो विपरीत मान्यता होती है वो मिथ्यात्व है। ठीक है, तो जब भी आपने तीन योगों का आश्रय लिया था तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये होता है कि आपको मन का, वचन का या काया का आश्रय लेने की जरूरत पड़ी। पहला क्वेश्चन है ये, राइट। यदि आपको मन, वचन और काया का मतलब योग से कुछ व्यापार करना था तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्यों किया, व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस हम क्या क्या करते हैं योगों के द्वारा, क्या क्या करना चाहते हैं। आप तो यूज करते हो मन का, वचन का या काया का?
मन से विचार करते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी है बुरी है, विकल्प ये चाहिए नहीं चाहिए वगैरह।
करेक्ट,
दूसरे भी बोलो, दूसरे भी है,
वचन से बोलते हैं या बुरा और काया से काम करते हैं।
बच्चों से मतलब उनको और काया से काम करते हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है तुरंत ही कि आप जो मन, वचन, काया से काम करना चाहते हो, वो कार्य जो आप करना चाहते हो, मन, वचन, काया एक्चुअली में क्या करते हो उसकी बात ही डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। आप जो करना चाहते हो वो कार्य संभव है या असंभव है, ये वाला जब क्वेश्चन आता है तब मिथ्यात्व का रोल प्ले करने में आता है। ठीक है, जो कार्य आपकी सीमा में नहीं है, आपके कर्तृत्व नहीं है, दैट यू कैन नॉट डू बट यू बिलीव दैट इट कैन बी डन बाय यू, आप वो कर सकते हो। तो आप एक्चुअल में तो नहीं कर सकते, डू नॉट हैव द पावर, यू डू नॉट हैव एनी उसकी अथॉरिटी की यू कैन एक्चुअली डू इट, बट आप सोचते हो कि आप करना चाहते हो एंड दैट्स हाउ यू कम डाउन टू योर मन, वचन एंड काया टू एक्चुअली परफॉर्म दैट इम्पॉसिबल टास्क। तो जो नहीं कर सकते पर करना चाहते हैं वह मिथ्या है। समझ रही बात? हेलो, करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला इंटेंशन, क्योंकि हम इंटेंसिटी के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी के हिसाब से कि बड़े से बड़ा अपराध क्या होगा, तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद, ये वाली बातों पर बात चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो करना चाहते हो, इज इट अकॉर्डिंग टू वस्तु की व्यवस्था, इज इट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑर्डर, उसका नेचर ऑफ हाउ थिंग्स आर डन इन दिस वर्ल्ड, और इज इट वो इसके हिसाब से कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि यदि एक कुत्ता बैलगाड़ी को खुद ही उसके नीचे चल चल कर घुमाना चाहेगा तो जितना भी वो अपनी बॉडी को हिलाएगा अल्टीमेटली उसको परेशान ही होना है, क्योंकि बैलगाड़ी उससे नहीं हिल रही है। बात समझ में आ रही है? राइट तो उसके योगों की प्रवृत्ति और ज्यादा पागलपन भरी होगी। राइट वो छिपकली की बात आती है ना, छिपकली दीवार पर क्यों, ऊपर छत पर क्यों इतनी देर से लटकी हुई है, वो क्यों नहीं जा रही इधर उधर, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो हट जाएगी तो दीवार नीचे गिर जाएगी। राइट तो उसने दीवार को संभाल रखा है, उसको पता है कि देखो यहाँ पर बेचारे चार चार मनुष्य बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े जीव है, मैं हट गई तो वो मर नहीं जाएंगे, तो इतने अच्छे दया के परिणाम से भी शायद वहां चिपकी हो, लेकिन उसकी वह योगों की प्रवृत्ति, वो दीवार को बचाए रखना, वो निष्फल है, उसके योगों का वो दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि मेरे योगों से ये हो रहा है बट वो हो नहीं रहा। करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारे, मेरा किसी को चिल्लाना कि भाई क्या है, मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस, मैं उससे इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे लगता है मेरे लड़ने से वो समझ जाएगा या वो ये करना छोड़ देगा, ये करना छोड़ देगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, वो नहीं होगा वैसा। करेक्ट, तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, ये आपके योगों का सबसे बड़ा दुरुपयोग होगा, उसका सबसे ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करना होगा जब हम अपने योगों को ऐसे कार्यों में यूज करेंगे जो एक्चुअल में वस्तु व्यवस्था में स्वीकार्य ही नहीं है, जो हमारे द्वारा किए ही नहीं जा सकते। करेक्ट, ये वाली बात ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो योग को पहले रखा, अब योग के बाद सेकंड आया अविरति। अविरति बराबर, इसमें क्या होता है अविरति का मतलब, किसी को पता है?
व्रत नहीं करना,
अविरति का मतलब क्या होगा? व्रत, हाँ मतलब जिसके जीवन में संयम नहीं है, व्रत नहीं है। ठीक है, देखिए सिक्वेंशियली हम चल रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग तो हमारे योगों में स्वच्छंदता तब आई जब हमने सोचा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, एंड देन एक चीज आती है, सिचुएशन आती है, आई डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट एंड आई स्टार्ट डूइंग समथिंग टू उसको ठीक करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, दूसरा आती है अविरति, जैसे कि हम यहाँ पर बैठे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं बैठे बैठे ही जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब मैं अपने पैर भी हिलाते जा रहा हूँ। अब आई डोंट नो वाई मैं पैर अपने हिला रहा हूँ, एंड आई डोंट नो उससे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है उसको करने से, लेकिन पढ़ाऊंगा अच्छे से। हम कभी बैठे बैठे रहते हैं तो हमारा पैर हिलाते रहते हैं उंगलियों के बीच में फंसा कर, राइट, सुनते जा रहे हैं बट कॉपी में कुछ हम लाइक स्कूल में या क्लासेस में हम लिखते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, करेक्ट। हम ये वाले जब सारे काम कर रहे हैं, सो द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस, इससे इज इट हेल्पिंग यू इन योर प्रेजेंट वर्क दैट यू आर डूइंग, ये आपको हाउ इज इट हेल्पिंग यू, कैसे कर रहे हो आप, ये जो कर रहे हो आप, ये वाला जो योगों की प्रवृत्ति है। सी, हमने ये तो देख लिया कि योग कर्म को इन्वाइट करेंगे, करेक्ट, तो आप सिचुएशन की ग्रेविटी को समझिए। आपका जब यहाँ जन्म हुआ तो आपके साथ तीन योग आए थे, यू डिड नॉट आस्क फॉर दो तीन योग, आपको मिले जन्म से ही गिफ्ट में, राइट, एंड नाउ फिर आपको बताया गया कि भाई अब ये तो योग जब भी हिलेंगे ना तब तक आपको कर्म आएंगे, सो इजंट इट अ सुसाइडल मशीन दैट हैज बीन गिवन टू यू, मतलब आपके हाथ में ये दे दिया है कुछ एक ऐसी चीज और ये बोला है कि आप यदि इसको हिलाओगे तो ये आपको अपने आप लगेगी और बहुत हर्ट होगा इससे। So now this is now, I did not ask for it. मुझे नहीं चाहिए था ये, but मुझे मिल गया, correct? तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो आपको मिल गया है योग, which जो अब आप कुछ भी कर लो, it cannot be separated from you. तो इस योग का जो right use है वो कैसे किया जाए और इस योगों से unnecessary पाप कैसे बांधा जाता है, तो उसके पहले तो intense, most intense जो कारण है, जो सबसे बड़े कारण है, वो कौन से थे? सबसे पहला मिथ्यात्व, कि यार जो इससे हो ही नहीं सकता आप वो करने के लिए इसका यूज करोगे तो जितना भी आपका कर्म बंध हो रहा है वो निरर्थक हो रहा है, आप मुफ्त में कर्म बांध रहे हो। Had you known that it is impossible, by doing so, आप शायद उतने परेशान नहीं होते अपने योगों को लेकर, करेक्ट। जैसे कि मुनिराज लोग होते हैं वो योग निरोध करते हैं, राइट, वो तो केवली भगवान को 14वें गुणस्थान में करते हैं, बस मुनिराज जब कायस्थर्व करते हैं तो अब उनके पास कोई शेर भी उनको खाने आएगा तो उसको दूर नहीं करेंगे, उपसर्गों में वो योगगत चेष्टाएं नहीं करते हैं, वो अपने आत्मा में अंदर और चले जाने को आपदा के काल में, जैसे कि टर्टल होता है, कछुआ होता है, वो और अंदर घुस जाता है अपने शेल के, ऐसे ही मुनिराजों की प्रवृत्ति ये है कि वे इसमें उपसर्ग को दूर करने की, मतलब बाहर में जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसको कमांड करने की बजाय वो इंटरनल जो कि उनकी है, स्वाधीन है, बाहर की सिचुएशन इस पर आधीन, अंदर की स्वाधीन, तो वहां पर उनका जहां वश चलता है वहां पर वो काम करते हैं, राइट, कि उनको सब पता है कि क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए, किस भूमिका में कैसे होना चाहिए, एवरीथिंग ही नोज। बट नाउ हमें क्या है, हमें कुछ भी लगता है कोई छोटी सी भी चीज, तो व्हाट वी वांट टू जस्ट चेंज इट यूजिंग द योग, ठीक है, जस्ट टेक वेरी वेरी नॉर्मल एग्जांपल, कोई भी हम ले, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई भी मैच आपको जो पसंद है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉट एवर यू आर सेइंग, एंड यू लाइक अ टीम, लाइक इंडिया खेल रहे हैं, वॉट एवर टीम, अर्जेंटीना, वॉट एवर टीम यू लाइक, राइट। नाउ आप यहाँ पर बैठे हो, लाइक इन योर रूम, सिटिंग ऑन सोफा, और आप मैच देख रहे हो, and you know you are giving the tips, bhai isko acche se khel, what is he doing, why is he not playing it straight, piche ma, like aapne nahi suna logon ko, like they see and they actually give tips to the player ki isko aise kyun kar raha hai, jaise catch kyun chhod de, isko catch nahi chhodna chahiye tha. Right, you are actually governing, you're trying to guide. आप किसी को बताना चाह रहे हो कि भाई कैसे खेलो, डिस्पाइट नोइंग दैट ही नोज बेटर क्रिकेट और फुटबॉल देन यू, दैट्स हाउ ही इज एन इंटरनेशनल प्लेयर. और फिर वो हार रहे हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, जीतने लगते तो भी यू नो वहीं पर ही बैठे बैठे उछलने लगते हैं. तो हमारी उधर की जितनी भी चेष्टाएं हैं उससे ना तो वो हमारी टिप्स को ले पा रहे हैं, ना ही वो हमारे परेशान होने से और चीयर अप करने से उनका कुछ मोटिवेशन बढ़ रहा है. बट स्टिल वी डू इट, वी डोंट नो व्हाई. करेक्ट. तो ये वाली जितनी भी चेष्टाएं हैं ये मिथ्यात्व प्लस अविरति को मिलाकर चलती हैं. अविरति मतलब विदाउट माइंडिंग योर जितने भी आपके एक्शन से मन वचन काया के, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्यों कर रहे हो और आप करते जाते हो. आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि हाँ अभी ये करेंगे हम फिर ये हो जाएगा, वो कभी होना नहीं है. बट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग जो आपने कभी सोचा था काश ऐसा हो जाता फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं सोचते सोचते. राइट, अब सबको अलग अलग टाइप के आते हैं, बच्चों को आते हैं कि वो टॉप करेंगे स्कूल में, बड़ों को आते हैं कि भाई अभी हम यहाँ घूमने चले जाएंगे या फिर मैं इतने सारे पैसे आ जाएंगे, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मैं वहाँ हाउस ले लूंगा, फिर हाउस लेके मेरे पास वो कार होगी, फिर वो कार लेके मैं वहां पर जाऊंगा. एंड देन एवरीबॉडी वुड प्रेज मी, तो सबके किसी को गाते अच्छे आते तो हिल्स नो कि चलो यार सब मुझे सुनेंगे फिर मैं इतना फेमस हो जाऊंगा. तो एवरीबॉडी थिंक्स एवरीबॉडी हैज दीस चेन्स ऑफ थॉट बट नोबडी नोज व्हाई. क्या
हम उसको शेख चल्ली के विचार बोलते थे,
शेख चिल्ली के ख्वाब. बराबर बराबर बराबर, शेख चिल्ली के ख्वाब. तो हमको बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होना तो है नहीं, और होगा तो भी सोचने से तो नहीं होगा एटलीस्ट. राइट, कुछ उसके लिए करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट देन वो सोचना कुछ काम का नहीं है. बट ये हम नहीं सोच पाते. तो पहले तो एक असंभव और ऊपर से कल्पना. राइट, असंभव कार्य की कल्पनाएं. तो ये जो आपने वो पढ़ा होगा, यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही. ये बड़े पंडित साहब रवीन पंडित साहब ने जो क्या बोलते विनय पाठ लिखा उसकी आखिरी की दो लाइनें हैं. यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना. राग द्वेष क्या है, बहुत काल्पनिक वस्तुएं हैं, इमेजिनरी है. तो द इमेजिनेशन ऑफ राग द्वेष के मैं ये करूं, मैं ऐसा कर लूं, ये ऐसा हो जाए, ये वाली इमेजिनेशन ही पैदा नहीं हो, क्योंकि ये इमेजिनेशन इज द रीजन वाई ये पूरा हमारे तरफ चारों तरफ दुनिया बनी हुई है. क्योंकि इस इमेजिनेशन से, इस मन के दुरुपयोग से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है और उस द्वार से कर्मों का यहाँ आना होता है. राइट, कर्म करते शरीर मिलता है.
समीर विजुअल से चैतन्य तो अनुभव जी.
हेलो
समीर,
समीर विजुअल
I can see them on the dashboard. वो नीरज भाई का फोन, नीरज भाई का नंबर, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर वो लोग होवे तो आपको पता लगे ना कि है उन लोग.
करेक्ट, तो दो बातें हो गई हैं. अविरति मतलब अननेसेसरी, यहाँ पर ना मिथ्यात्व काम कर रहे हैं ना कुछ काम कर रहे हैं, आप तो बस अपना पैर हिला रहे हो बैठे बैठे, क्यों, यू हैव नो क्लू. राइट, तो ऐसा हमारी निश्चित अवस्था जिसमें वी डू नॉट नो व्हाई वी आर यूजिंग ये तीन योग को, वो अविरति के खाते में जाएगी. मिथ्यात्व के खाते में जितने भी असंभव काम हम करना चाह रहे हैं वो जाएंगे. और इसके बाद आता है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म है, वो है कषाय. इसके बहुत सारे भेद हैं, हम मोटे मोटे 9 भेद पढ़ते हैं, 9 प्लस 4 13 भेद, मतलब तो क्रोध मान माया लोभ। कषाय किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ कषाय, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं, आत्मा को कसने वाला, मतलब इट्स लाइक अ रोप जिससे आपकी आत्मा को बांधा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज जब भी कषाय होगी वो अननेसेसरी ही होगी। तो 4 मेजर कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, और इसके साथ 9 कषाय हैं, जो कषाय जितनी वजनदार तो नहीं है, इतनी हैवी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन बट फिर भी कषाय के जैसी ही है, लेकिन कषाय 9 कषाय उनको कहते हैं, तो वो है हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद एंड नपुंसकवेद। ठीक है, ये वाले कषायों के नाम सबको पता है? हेलो, ठीक है, अब हम बहुत बहुत लाइटली और बहुत नीचे से हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं कि कषाय हमारे जीवन में कितनी नेचुरली बुनी हुई है, राइट, लाइक वी ऑलवेज थिंक इट इज गुड टू स्माइल, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बट वो खुश रहना एक कषाय है, हास्य। हमें हमेशा बताया गया है कि हमको हमेशा दूसरों से प्रीति करनी चाहिए, वी शुड बिहेव वेल, हमको बहुत अच्छे से, वेरी नाइसली वी शुड बिहेव विद अदर पीपल, हमको थोड़ा अफेक्शन शो करना चाहिए, बट वो कषाय है, रति है, राइट, फिर यदि हमको कोई बुरी चीज है तो हमें उससे दूर भी रहना चाहिए, हमें वहां पर रति नहीं समझनी चाहिए, तो अरति, बट वो भी एक कषाय है। कुछ यदि हमसे चीज दूर चली जाए तो ऑब्वियस है ना कि मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, बट वो बुरा लगना शोक, वो भी एक कषाय है। अब कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगे कि मैं अकेला जा रहा हूँ अंधेरे में और मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, फैमिली भी चल रही है, तो मुझे थोड़ा इनसिक्योरिटी तो फील होगा, बट वो भय, वो भी एक कषाय है। अब कोई ऐसी वस्तु देख ली जो बहुत भयानक है, जस्ट आई वॉज पासिंग बाय एंड वहां पर इट वॉज अ चिकन शॉप और वहां पर बहुत गंदा जीवों को मार रहे थे, तो मुझे बहुत ग्लानी हुई, बहुत बुरा लगा, या मैंने कुछ और गंदा देख लिया, तो बट ये बुरा लगना, ये जुगुप्सा, ये भी एक कषाय है, राइट, तो हंसना है, रोना है, किसी से प्रीति करना है, अप्रीति करना है, शोक करना है, भय करना है, ग्लानी घृणा जुगुप्सा करना है, और फिर पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, या दोनों को दोनों, इस प्रकार से ये वाली जो इच्छाएं हैं जिनको हम नेचुरल बोलते हैं, सबको, हंसने को, रोने को, डरने को, ये सारी की सारी चीजें, ये सब व्हेनेवर यू आर डूइंग दे आर इनवाइटिंग, नॉट कर्म तो आ ही रहे हैं, दे आर आल्सो आस्किंग कर्म टू स्टे, रुकिए आप जो आए हैं इतनी दूर से, इतनी मुश्किल से, आपको आत्मा के साथ अभी रुकना चाहिए, राइट, आप जस्ट इमेजिन करिए, मतलब यदि हम सोचने जाते हैं तो हम क्या करें जिससे कर्म नहीं बंधेंगे, आप कुछ भी करने जाएंगे वो कोई ना कोई कषाय के ट्रैप में फंसकर आपको बांधेगा ही, आप हंसे तो बंद हो रहा है, रो रहे तो बंद हो रहा है, आप किसी के प्रति करुणा प्रीति करते हैं तो कर्म बंद है, हिंसा क्रोध करते हैं तो कर्म बंद है, कुछ भी। तो अब आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा सिचुएशन ग्रेव है और हम कैसे एक चक्र व्यू में फंसे हुए हैं। फर्स्ट तो कि हमको ऐसी भयानक मशीन दे दी गई है 3 योगों वाली, और ऊपर से हमारा जो उपयोग अभी चल रहा है, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो 5 इंद्रियों का हम आश्रय लेके काम करते हैं, और 5 इंद्रियों का आश्रय लेकर यही 9 चीजों में से कोई एक चीज होगी, और जब इनका एक्सट्रीम फॉर्म होता है तो वो क्रोध मान माया लोभ के बीच में चला जाता है। इसके अलावा वी डोंट नो एनीथिंग एल्स टू डू, हम तो और कुछ करते आता ही नहीं है, हमसे आता ही नहीं है और कुछ करते, मतलब हम और कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक कर्म बांधने की मशीन बनकर रह गए हैं, हम जो भी करेंगे कर्म बंधेगा, बात समझ में आई?
बराबर।
वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर, हम बस एक मशीन है, और अब इस मशीन की ब्यूटी जैन दर्शन ऐसे नापेगा कि आप कैसे कर्म बांधते हो, क्योंकि जब तक आप शुद्धोपयोग रूप आत्मा में लीन नहीं हुए हो तब तक आपने कर्म बांधने के अलावा दूसरा काम किया ही नहीं। यू हैव डन नथिंग एल्स अदर देन इनवाइटिंग कर्मास एंड गेट बॉन्डेड विद द कर्मास। हमने कोई दूसरा काम किया ही नहीं। हम बात कर रहे हैं तो कर्म है, सोच रहे हैं तो कर्म है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, एनी थिंग दैट वी आर डूइंग, चाहे वो सच्चे देवशा गुरु के सामने करें या कुदेव के सामने करें, मनुष्यों के सामने करें, त्रियंचों के सामने करें, वेन एवर वेयर एवर वॉट एवर वी आर डूइंग, यदि वह आत्मा के अंदर नहीं हो रहा है हमारे उपयोग के साथ, शुद्धोपयोग में नहीं हो रहा है, वी आर डूइंग नथिंग बट हम कर्मों को ही बांध रहे हैं। और चौथी चीज है कि हाँ, तो चौथी चीज इसमें आती है प्रमाद की। ठीक है, अब हमारे पास मिथ्यात्व भी नहीं हो पॉसिबल है, अभिरति भी हमने करना छोड़ दी, ठीक है, हमने कषायों पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल पा लिया, बट कभी कभी हमारा अबुद्धि पूर्वक या हमारा प्रमाद कभी ना कभी कहीं से आके डेरे डाल जाता है, तो ये प्रमत्तचर्या जो होती है, प्रमादचर्या होती है, ये वाली भी है, बट ये वाली चर्या से जो काम होता है, ये वाली चर्या प्रमादचर्या उनकी कहते हैं जिनके जीवन में आप प्रमाद भी थोड़ा थोड़ा चल रहा हो, बाकी हम सबके तो अविरति ही है, जहाँ पर व्रत ही नहीं है वहां पर प्रमाद का क्या प्रश्न होगा, क्योंकि सब कुछ ही प्रमाद है, राइट? मतलब तो इस प्रमाद को आखिरी में इसलिए लिया कि मिथ्यात्व नाम का यदि पहला इतना बड़ा हमारे पास शेर बैठा हुआ है, तो कषाय, अभिरति और प्रमाद जैसी कोई चीजें कुछ मायने नहीं रखती, कि हम बिल्कुल प्रमाद नहीं करते हैं, हम बहुत ध्यान से अपने पैर रखते हैं, हम अभिरति में अपने शरीर की ऐसी चेष्टाएं नहीं करते, मन से नहीं सोचते, वो कुछ इट मीन्स नथिंग। यदि मिथ्यात्व है तो ये कुछ भी मतलब का नहीं रह जाता, राइट? ठीक है, सी देखिए क्या रहेगा, ये वाला नियम है, ये सिद्धांत का नियम है, ये तो प्रवचन सार ग्रंथ में और पंचास्तिकाय जी में और कोई भी ग्रंथ हम पढ़ सुन सारी ग्रंथों में है, ये वाली बात कही कि जो जो जीव भक्ति दया दान मैत्री इत्यादि परिणाम करता है, वह देव के प्रति करे या कुदेव के प्रति करे, उसको बलिता तो पुण्य ही है। डू यू ऑल अग्री टू दिस और नॉट? पहले तो दया का परिणाम, भक्ति का परिणाम, क्षमा का परिणाम, ये सारे जितने भी परिणाम है, ये चाहे सच्चे देव के प्रति हो या कुदेव के प्रति हो, ये परिणाम शुभ परिणाम है, तो इनसे बंधेगा तो पुण्य ही। ठीक है, anybody has any objection on this?
पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी
नहीं, वो हम फ्यूचर का छोड़ देते हैं, प्रेजेंटली तो भाई उसको जो बन रहा है वो पुण्य बन रहा है।
ठीक है,
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, राइट? तो लेट्स टेक अ केस कि एक कुदेव को मानने वाला जीव है और वो अतिशय भक्ति में प्रवृत्त रहा है, बहुत भक्ति है उसको अपने देव की, जिसको भी उसने देव माना हुआ है, और वो बहुत शांत है, बहुत अच्छे से भक्ति करता है। टुडरमन जी ने बताया भी कि ऐसे लोग जो इतने मंद कषाय से किस स्वर्ग तक जा सकते हैं, कुदेव को मानने वाला ऊपर के स्वर्ग तक, नहीं 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 नहीं, नौवे ग्रीवेक तो नहीं, वो तो सिर्फ दिगंबर तक की उसकी लिमिट बताई जाती है।
हाँ,
नौवे ग्रीवेक तो जैन द्रव्य लिंगी यथार्थ जानने वाला मुनि, वहाँ पर तो अभी के वर्तमान के लोगों के लिए उन्होंने लिखा है, पांचवा स्वर्ग तो ऐसे ही लिख दिया है वहाँ पर कि वो हो ही जाएगा। तो हम तो यहाँ पर तो ये बोलना है कि सिंपली उसकी कषाय मंद है, करेक्ट? तो कषाय मंद है तो अब सच्चा देव बुरा देव कुदेव ये वाली बात अभी मैटर नहीं करेगी, जब हम कर्मों से पूछे हैं, कर्म आ रहे हैं और उसको बंध रहे हैं, तो उसकी कषाय को देख के बंध रहे हैं। कषाय कैसी है? मंद कषाय है। परिणाम क्या है? शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम है तो उसको कर्म का बंधन क्या होगा कि पुण्य कर्म का बंध होगा उसको, बराबर। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है, ये वाली बात है तो इसको अमृतचंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में चैनानिक सूचक चूली का उसके आखिरी आखिरी में गाथाएं दी हुई है ये, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो श्रमण, मतलब श्रमण यानी सामान्य जन भी वहां लिया और मुनिराज भी लिया, वो अल्पज्ञ को, अल्पज्ञ मतलब जो सर्वज्ञ नहीं है, मतलब कुदेव को अपना देव मानकर उसकी पूजा वंदना अर्चना वगैरह करता है, उसको स्वर्ग आदि तो मिलते हैं, स्वर्ग मिलते हैं, साता कर्म वगैरह तो बनता है, लेकिन उसको निर्वाण प्राप्त नहीं होता। और फिर अब उसका डिस्कशन में ये वाली पॉइंट आता है कि आप जिसको पुण्य और पाप, साता और असाता बोलते हो, वो अघातिया कर्मों का उदय और उन कर्मों का बंध है।
बराबर।
किसका? अघाती कर्म का, करेक्ट। और चूंकि अघाती कर्म ही हम उससे, अघाती कर्मों के उदयों से ही हम घिरे हुए हैं बाहर, सिंपल है। आपके पास 5 खिड़कियां हैं, 5 विंडोज यू हैव, बट प्रॉब्लम इज कि ईच विंडो ओनली लेट्स यू सी द वर्ल्ड आउटसाइड, नॉट अंदर का, करेक्ट। खिड़कियों से आप बाहर देखोगे, अंदर देखने के लिए खिड़कियां थोड़ी लगती हैं। तो 5 खिड़कियां हैं, आपने हमेशा बाहर देखा क्योंकि आप यदि इंद्रिय ज्ञान है वो बाहर, उसका विषय बाहर कहीं है, और बाहर जो कुछ भी है वो सब अघातीय कर्म का उदय है, करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। तो आपने हमेशा संसार का जब इवेल्युएशन किया तो आपने अघातीय कर्म के उदयों में कि मुझे साता है कि असाता है, उसमें आपने अपने जीवन की सफलता या विफलता मानी कि यार हम तो कितने पापी हैं, हमारे तो कितने पाप का उदय है, अरे हमारे कितने पुण्य का उदय है, सब बढ़िया चल रहा है, सब साता है, ठीक है। बट यहाँ पर गेट पर खड़ा हुआ मिथ्यात्व, जब वहां पर उसको भक्ति का परिणाम चल रहा है कुदेव की, उसी समय इसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करवा रहा होगा, 30 कोड़ा कोड़ी का, 20 कोड़ा कोड़ी का, 10 कोड़ा कोड़ी का, किसी का भी। तो जो मिथ्यात्व को यहाँ पंडित दौलत राम जी ने पहले रखा है, वो उन्होंने ये देख के नहीं रखा, उनका ये अर्थ नहीं है कि आप कुछ कुछ एक दो सागर स्वर्ग में मजे कर आइए, बहुत मस्ती कर आइए, पूरा पुण्य भोग के आ जाइए, और फिर एक इंद्रिय में कहते चाहे थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, वहां पर जाकर बहुत सारे काल तक आप दुखी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि ये देखो मिथ्यात्व नाम का ऐसा भयंकर चोर अंदर बैठा हुआ है, जो हमको हाथ से रति अरति में तो ये भ्रम करा देता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो योग्य कर रहा हूँ, बहुत अच्छे परिणामों से कर रहा हूँ और मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, विशुद्ध परिणामों से काम चल रहा है। लाइक अभी हमारा स्वाध्याय में कितना अच्छा मन लग रहा है, आज पूजन कितनी अच्छी हुई, विधान कितना अच्छा हुआ, ये वाला भ्रम कौन पीछे से दे रहा है? परिणाम तो शुभ हुआ, मंद कषाय का हुआ, दैट इज गुड, हो गया। बट जो उसके अंदर मिथ्यात्व पीछे से आके जो ताली बजा के जाता है और उस ताली बजाने में हमको संतुष्टि हो जाती है कि ओ सही तो है सब, ये वाली संतुष्टि घातिया कर्मों को बांधती है, और उस घातिया कर्मों, वो दे आर रियल एनिमीज, वो हमारे सच्चे शत्रु है, राइट। इसलिए बोला है मिथ्यात्व तो पहले कंट्रोल में किया जाए, कषाएं बाद में अपने आप सब दिल ऑल फॉल इन लाइन, ठीक है। फर्स्ट गेट इज द मिथ्यात्व, राइट। हमको भी कई बार संतुष्टि हो जाती है हम लोग को अपने परिणामों में, कई बार हम थोड़ा सा देख कर चलते हैं, लाइक कभी कभी आपके बहुत परिणाम होते होंगे, आप रात में बोलते होंगे चलो टॉर्च से देखेंगे, टॉर्च से देख के चलेंगे, नीचे देख कर चलेंगे, और हम बहुत संतुलित हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, पहली बात तो हमारे यहाँ सीजन आते हैं, कभी कभी हमारे किसी दशरक्षण पर्व में बहुत अच्छे परिणाम हो जाते हैं, किसी में नहीं होते इतने। अष्टानी का कई बार की बहुत अच्छी जाती है, कई बार हम उतना मन ही नहीं लग पाता, करे कैसा होता है, एक दिन बहुत अच्छे चला जाता है, दूसरे दिन आपके परिणाम ही नहीं लगते, ऐसा होता है सबके साथ होता है।
परिणाम
इसका कारण ये है, इसका प्रॉब्लम, इसका कारण ये है कि मिथ्यात्व को केटर किए बिना, आप मिथ्यात्व को संभाले बिना परिणामों को संभालना चाहते हो, तो वो परिणाम आपके संभालने से नहीं संभल रहे हैं, वो आपका अभी है इतना, भवितव्य थोड़ा ठीक है तो संभले हैं। इफ यू वॉन्ट टू रियली टेक कंट्रोल ऑफ योर परिणाम, आप मिथ्यात्व को टैकल करिए, क्योंकि मिथ्यात्व के नहीं होने पर जीव की दशा पागल के जैसे कही है। तो गुणभद्राचार्य ने गाथा लिखी है आत्मानुशासन में, कभी जीव को करे धर्म में, कभी करे पापों से लिप्त, भी मानो के जीवन में भी पुण्य पाप में करे चरित्र। अतः किसी अंधे का रस्सी बुनना है या गज स्नान, यह गृहस्थ आश्रम है मत पुरुष के कार्य कलाप समान। क्या कभी तो इसको धर्म में करता है, कभी तो इसको धर्म करता है, और अब भी 2 मिनट बहुत अच्छे परिणाम हो रहे थे और आते ही साथ फिर सारे परिणाम कुछ और हो गए। अभी मंदिर में था और अभी बाहर आके लड़ने लगा। तो जैसे कोई अंधा रस्सी को बुनता है, तो यहाँ से बुनता जाता है, वहां से रस्सी निकलती जाती है, उसकी गांठ यहाँ पर लगाता है, वहां से खुलती जाती है। या फिर हाथी ने बहुत देर तक नहाया, तालाब में बहुत देर तक नहाया, और बाहर आते ही साथ उसने सारी धूल को उठा के अपने ऊपर डाल लिया, तो उसके नहाने का कोई मतलब नहीं निकला। ऐसे ही मिथ्यात्व सहित जो प्राणी है, वहां तो गृहस्थों की बात करिए, फिर भी मिथ्यात्व सहित जो जीव है उसके परिणामों का कोई ठीक ठिकाना है ही नहीं, तो उसको तो जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटे तब तक शांति नहीं है, है ही नहीं।
बराबर,
ठीक है। इसलिए मिथ्यात्व को पहले लिया है। तो ये वाली बात नहीं है कि कोई के बहुत ज्यादा मिथ्यात्व हो तो वो दया दान नहीं कर सकता, वो अच्छी गति में नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, वो मंद कषाय है, लेकिन वो आप एक्सटीरियर फंक्शन देख रहे हो कि बाहर में कितना है, बट ये भी तो देखो जब वो पुण्योदय के बीच में है तब क्या वो अंदर से कषायों की अग्नि में नहीं चल रहा, क्या वो आकुलता को नहीं प्राप्त होता, क्या वो परेशान नहीं है, राइट? तो आप इसके लिए एग्जांपल के लिए हम किसी को भी उठा के देखें, कोई आज बहुत संपन्न हो, पुण्य के उदय वाला हो, बट हम उनके जीवन पे झांक के तो देखेंगे, चलो बाहर से तो संपन्नता है, आंतरिक शांति का क्या है, क्या उनका पूरा टाइम अपने को मेंटेन करने में ही जा रहा है, क्या चलो अभी वर्ल्ड नंबर वन है तो टू नहीं हो जाए, और आर दे रियली उसका कुछ भोग पा रहे हैं इतने सारे जो भोग आ गए, कि भोगने की शक्ति तो सीमित है, करेक्ट? तो ये सब मिथ्यात्व है जो आश्रव को इतना दृढ़ तरीके से, मतलब उसकी इन्फिनिटी को बनाए रखता है कि वो अनंत काल तक चलता रहेगा, यदि आपने मिथ्यात्व को टैकल नहीं किया तो, ठीक है? ठीक है, तो अभी देखना आप तीन, अब हम तीन भाग करेंगे इसके, पहला भाग करेंगे हम दर्शन मोह, दूसरा करेंगे चारित्र मोह, ठीक है? पहले दो भाग में बता रहा हूँ, दर्शन मोह से क्या हो रहा है, दर्शन मोह से मिथ्यात्व हो रहा है, ये हमारी परिणति में प्रति समय चल रहा है, ठीक है? चारित्र मोह से क्या हो रहा है, चारित्र मोह से प्रमाद भी होता है, अभिरति भी होती, कषाय भी होती है, तो इसलिए इन सबको मिलाकर ग्रुपिंग करके बोलेंगे तो एक में डाल सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई बात नहीं है, अविरति प्रमाद, ठीक है, इन सबको भी यहाँ पर डाल दें, तो हमारे पास दो काम हो रहे हैं, मिथ्यात्व और कषाय हो रहे हैं, दो मेजर काम हो रहे हैं, बराबर। इसी के साथ एक विशिष्ट हमारा गुण है उपयोग नाम का, वो उपयोग गुण की भी प्रति समय पर्याय हो रही है, ठीक है? तो देखो तीन तीन पर्याय एक साथ चल रही है, मिथ्यात्व की पर्याय, चारित्र में कषाय की पर्याय, और उपयोग में वो ज्ञान की उपयोग की पर्याय चल रही है, ठीक है? हेलो, और बाहर में चल रही है मन वचन या काया की प्रवृत्ति, ठीक है? चार काम हो रहे हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है, आपकी उपयोग चल रहा है, और आपके मिथ्यात्व और कषाय चल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर अब हम एक बार थोड़ा इसमें इक्वेशंस में खेल के देखते हैं कि यहाँ पर आपने वचन से, सॉरी मन से आपका कुछ सोचना हुआ, ठीक है? वो सोचना असंभव है और वो सोचना कषाय के साथ है कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो आपने एक तो असंभव कार्य को कर्णपट द्रव्य में कुछ करने का सोचा, और वो भी इसका कषाय होकर सोचा, कषाय के साथ होकर सोचा, ठीक है। और उसी समय आपका उपयोग, मतलब ज्ञान भी ये जान रहा है कि आपने ये सोचा, तब ये चारों एक साथ होंगे, तब कहीं जाकर कर्म के आने की और रुकने की व्यवस्था बन पाएगी। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सातवें गुरु स्थानवर्ती जो मुनिराज है,
अनुभव की वो दोबारा लेंगे
थोड़ा। हाँ, मैं आपको एग्जांपल से पहले स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताइए, सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज है कि नहीं है? सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज जो होते हैं वो शुद्धोपयोग में बैठते हैं, राइट? ठीक है, आत्मा के बाहर तो नहीं है कहीं, वो तो आत्मा के अंदर डूबे हुए हैं, करेक्ट? इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज कहाँ बैठे हुए हैं?
वो भी अपने आत्मा में उपयोग अंदर है, मुख है।
नौवे गुण स्थानवर्ती मुनिराज,
वो भी
नौवे गुण स्थान, और दसवें गुण स्थान वाले भी वहीं पर है, करेक्ट? ठीक है। अच्छा, तो सातवें आठवें नौवे दसवें जो श्रेणी को चढ़ रहे हैं, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज, उनके कषाय बाकी है अभी दसवें गुण स्थान तक के, नहीं है कषाय बाकी?
बाकी है,
कषाय बाकी, तभी तो वीतरागी नहीं है। बारहवें में या ग्यारहवें में वीतरागी होंगे, राइट? यदि बारहवें में वीतरागता आती है, मतलब उसके पहले राग है, इतना तो मानना पड़ेगा ना। ग्यारहवें में वीतरागता आती है, इट मीन्स उसके पहले राग है, करेक्ट? ठीक है, ओके। इसका मतलब कि उसके पहले राग है ना। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में श्रेणी में चढ़ रहे हो जो मुनिराज है, वो कैसे कैसे करते हैं ये सब, मतलब राग कर कैसे लेते, उनके पास फुर्सत कहाँ पर है राग करने की, वो तो श्रेणी में है।
अब बुद्धिपूर्वक का राग होता है,
अबुद्धिपूर्वक का राग होता है। अच्छा, तो उस राग से बंद होता है कि नहीं होता?
बहुत कम होता है,
होता है, बंद तो होता है, क्योंकि अभी तीन योग ले हुए, तो काया तो एकदम स्थिर है, वचन स्थिर है, वचन नहीं बोलते हैं, श्रेणी में है, मगर मन में शायद पता नहीं कुछ विकल्प चलता भी रहेगा, होएगा, पता नहीं।
अरे तो मन में कैसे चलेगा जब वो शुद्ध उपयोग में डूबे हुए हैं, तो मन से क्या सोच रहे होंगे, वो कुछ सोच थोड़ी रहे होंगे।
जो विकल्प है वो लाइक मुझे ये निर्वाण मोक्ष पाना है कि वो भी विकल्प कहलाते हैं ना।
अरे नहीं नहीं मोक्ष पाने का विकल्प तो है ही नहीं उनको अभी, वो तो मोक्ष में चली, उनको तो पता ही है वो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, विकल्प के उनको पता है विकल्प कितना निरर्थक है, इसमें कुछ करते ही नहीं है विकल्प, वो श्रेणी चल रहे हो
उस श्रेणी में।
तो ये अबुद्धि पूर्वक और बुद्धि पूर्वक में डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर दौलत राम पंडित जी ने एक शब्द लिखा, सहित उपयोगा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन दिस होल आश्रफ का थे, राइट? वे मुनिराज उनके हो तो रहा है ये सब कुछ राग, उनके लोभ सूक्ष्म लोभ दसवें गुणस्थान के अंत तक रहेगा, तो उनके रागादि प्रति समय तो चलेंगे, हर समय चलेंगे, एक समय वो वीतरागी नहीं है जब तक ग्यारहवा गुणस्थान बारहवा गुणस्थान नहीं है। ऐसा होने पर भी क्योंकि उनका उस राग के पास उपयोग नहीं जाता, तो वो राग की कुछ कीमत नहीं रह जाती, ठीक है? उनके मन वचन काय के द्वार खुले हो तो खुले हो, जो हो रहा हो तो हो, उनके सही में सच में अंदर कषाय वगैरह चल रही है तो चल रही है, मिथ्यात्व नहीं है, अवृत्ति नहीं है, प्रमाद नहीं है, लेकिन कषाय तो है, मोह नहीं है, लेकिन राग तो है, द्वेष भी नहीं है, राग तो है, राइट? इतना होने पर भी उसको गिना ही नहीं, तो इससे ये पता पड़ा कि इन सब में जो मेन कल्प्रिट है वो उपयोग है. सी कषाय का होना इज नॉट इन कंट्रोल. हेलो.
हाँ जी.
हेलो. कषाय का होना दिस इज नॉट इन कंट्रोल. बहुत क्योंकि जब सातवें आठवें नौवें दसवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की भी स्वतः हो रही है तो हमारी तो चलेगी ही, लेकिन उस कषा में उपयोग को खराब करना मतलब जब वाली गाथा आपको याद होगी उपयोग में उपयोग है उपयोग हाँ, नहीं क्रोधादि में
हाँ,
करे बोलिए वो
ऐसे ही
उपयोग में उपयोग
तो
है फिर
वर्तमान में
क्रोधादि
उपयोग नहीं क्रोधादि में गाथा है समय सर की राइट क्या है क्या क्या है उसमें मतलब ये आर्ट. यहाँ पर पंडित दौलत राम जी बता रहे हैं कि आपको मिथ्यास्त्र के पास अभिरति के पास कषाय के पास या प्रमाद के पास शिकायत लेके नहीं जाना है. इस आश्रम में ना तो मन वचन काया की गलती है ना कषाय प्रमाद योग की गलती है ना मिथ्यात्व की गलती है. इसमें गलती है तो आपकी खुद की. वहाँ तमाशा चल रहा था परिणति में वहां पर हो रहा था क्रोध और वहां मिथ्यात्व चल रहा था लेकिन तमाशा को देखने आपको जाना क्यों था. आप क्या ज्ञान रूप नहीं रह सकते थे. उपयोग को क्रोध क्यों कर देखने जाना था कि चलो क्रोध हो गया है. क्रोध क्या उपयोग अपने आप से खुश नहीं था. राइट right? तो ज्ञान जब ज्ञान में नहीं रह पाता तो वही ज्ञान खुद ही कर्म को बांधता है और किसी की इसमें गलती नहीं है. और सारे कर्म चलते रहे सब कुछ चलता रहे और ज्ञान ज्ञान के अंदर बैठ जाए वो उपयोग अपना उपयोग में ही पूरा पैरों को पसार ले और वहीं पर ही बैठ जाए कि अब जो हो रहा है होने दो सब गया एक साइड. मैं तो ज्ञान को मैं तो चैतन्य रूप ही रहूंगा. एक चैतन्य 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 मेरा काम है. ये कर ले तो कितनी देर लगती है उस उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में उस मुनिराज को वीतराग होने में इस राग क्रोध इस इन सारी चारों आश्रमों को बंद होने में कितना समय लगता है. कुछ नहीं बैठे और अब भी देखो भरत चक्रवर्ती अब भी उपयोग में उपयोग को उन्होंने बिठा लिया. और देखो लोग यही सोच रहे हैं कि भाई अभी तो जस्ट केश नौच ही चल रहा है बाकी मुनिराजों का और यहाँ पर तो देवों ने बाजे बजाने शुरू कर दिए केवल ज्ञान के. क्या हुआ ये. तो कोई ना कषायों की गलती है ना योगों की गलती है. यहाँ पर द प्रॉब्लम इज उपयोग. जीव को खुद ही कषाय करने में मजा आता है उसके पास इतना टाइम है उसको जानने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है जब तक और खाली बैठ जाए वो जानने को अकेली बोल दिया जाए तो बोलेगा ये क्या है. हम खाली नहीं बैठ पाते हम ज्ञाता नहीं रह पाते हम जाननहार हैं लेकिन हमें जानने की क्रिया में इस क्रिया में कोई आनंद नहीं आता. जिस क्रिया के साथ आनंद जुड़ा हुआ है जो ज्ञान आनंद साथ में ही होता है उसमें वी डू नॉट इंजॉय वी डू नॉट हैव एनी एंजॉयमेंट क्योंकि हमने उस स्वरूप को पहचाना नहीं है. तो वेरी सिस्टमेटिकली पहले हमें वस्तु का स्वरूप समझकर व्यवस्था समझनी पड़ेगी द्रव्यों की. राइट प्रवचन सार की आखिरी की गाथाओं में बोला है प्रॉपर सिस्टमैटिक के पहले तुम अच्छे से पदार्थों को जानो. छह द्रव्य हैं तुम जीव हो सामने वाला पुद्गल है. ये जानोगे तो पता पड़ेगा कि इस सामने वाले पुद्गल के प्रति की गई मन वचन काया की या हमारे सारे विभावों की कषायों की जितनी भी परिणति है वो निष्फल है वो किसी काम की नहीं है. जब ये पता पड़ेगा तो आप अपने ज्ञान में उतरोगे और ज्ञान में उतरोगे तो फिर कुछ बताने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी. कषाय अपने रास्ते आप अपने रास्ते सब काम हो जाएगा. तो ये वाला वर्ड सहित उपयोगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब हम इतने दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि मन की गलती के वचन की के काया की मिथ्यात्व अविरति प्रमाद की. यहाँ ये कह रहे हैं ये कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा यदि तुम देखने नहीं जाओ तो. बट हमें खुद ही इसमें इतनी कुतूहल इतनी चित्त में शांति है हम उपयोग को वहां ले जाते हैं और ये दुख की पूरी संतति शुरू होती है. ठीक है. मुनिराज का उपयोग आत्मा में है उदित होते हुए विकल्पों में और कषायों में नहीं है. तो वे राग वाले होने पर भी वे देखो कैसे श्रेणी में चढ़ते हुए कर्मों को काट रहे हैं प्रति समय काट रहे हैं एकदम इतनी भयंकरता से काट रहे हैं कि जितनी भी उनकी सत्ता में घातिया कर्म है वो 30-40 मिनट के बाद एक नहीं बचेगा. ये सब किसके कारण हो पा रहा है. इतने मतलब नए कर्म ऐड भी होते जा रहे हैं वो अटैक करने भी आ रहे हैं बट उपयोग उपयोग में है तो उसकी शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, वो क्या कर पा रहे हैं बेचारे सारे कर्म मिलके भी, कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेन कल्प्रिट ये कि हमें कषायों के कारण गुण नहीं है, कषायों में हम क्यों जाते हैं झांक ले, मुझे गुस्सा आ रहा है ये तो पता पड़ रहा है ना, तो अभी तुरंत पता पड़ना चाहिए कि नहीं गुस्सा नहीं, मुझे गुस्से का ज्ञान हो रहा है, तुरंत गुस्से को जाना पड़ेगा उसी समय। अगर चैतन्य सामान्य को मुख्य करते हैं ज्ञान सामान्य को, तो सब कुछ सारी कषाय वहीं पर ही तुरंत गिरती है, तुरंत गिरती है। ठीक है, आप लोग इस पर विचार करिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करके बंध तत्व की बात करेंगे।
अच्छा, एनी क्वेश्चन? गुरुदेव की जो भक्ति करता है वो कौन से स्वर्ग तक जाता है?
वो इसमें मतलब जो उत्कृष्ट, तो जो अलग अलग जैसे साधु बोले हैं उनके अद्वैत वाले, उनका तो बहुत ऊपर तक बताया है, बट वहाँ पर तो शायद इवन जो मुसलमान आदि है उनका भी नाम लेके पांचवें अधिकार में बोला है, इनकी कषाय मंद, शायद तीसरा या पांचवा स्वर्ग लिखा है, नॉट श्योर, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। पांचवा या तीसरा स्वर्ग, तीसरा या पांचवा, मैं एक बार कंफर्म करके एग्जैक्ट बता देता हूँ। बाकी तो और ऊपर तक भी जा सकते हैं कुछ ऐसा है, बट ये तो बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि मिलेच्छ, वहां पर पंडित जी ने लिखा कि मिलेच्छ आदि भी मुसलमान जैसे ये लोग भी यहाँ तक जाते हैं, तो वो तो उसमें तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि वो कषाय की मंदता में उन्होंने ज्यादा टाइम दिया, लेकिन नित्यात्व तो बना रहा। तो आप वो दो तीन सागर की आयु का स्वर्ग देख रहे हो, यहाँ पर सदगुरु वो देख रहे हैं कि उसके बाद जो आपके साथ घटना घटने वाली है, क्योंकि आपका संसार वहां पर अनंत हो गया है, दर्शन मोहिनी की सत्ता इतनी सारी हो गई है, चारित्र मोहिनी की सत्ता इतनी बढ़ गई है, लेकिन आपको घातीय कर्मों से कुछ डर लगता नहीं है, और जबकि वो ही हमारे जीवन की रचना करते हैं संसारिक। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, तीसरा या पांचवा है, पांचवा अधिकार में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इस पर थोड़ा सोचिएगा, हम लोग वापस अगली बार उपयोग की चर्चा करके फिर आश्रव तत्व से बंध तत्व की ओर ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, चलिए।